ओम शांति। हम सभी का ये ब्राह्मण जीवन बहुत पुण्य कर्मों के बाद हमारे श्रेष्ठ भाग्य के कारण प्राप्त हुआ है। हम सभी बाबा के बच्चे इस जीवन में संपूर्ण ईश्वरीय सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये जीवन सचमुच अनमोल है। जैसे भक्ति में लोग कहते थे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, सत्यता यह है कि 84 जन्म के बाद मनुष्य को जो जन्म मिलता है वही वास्तव में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें मनुष्य अपना भाग्य जैसा चाहे बना सकता है। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा की आशाओं के अनुरूप अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति दे रहे हैं। कोई भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि वो उड़ती कला में आ जाए। उसका जीवन संपूर्ण सुख शांति पवित्रता संतुष्टता खुशी आनंद प्रेम से भरपूर हो जाए। लेकिन संसार में बढ़ती हुई समस्याएं, ग्रस्त जीवन का कहीं कहीं बनता हुआ जंजाल, या कहीं कहीं मनुष्य स्वयं को ही अनेक प्रपंचों में फंसाए रखता है। कहीं तनाव है, कहीं झगड़े हैं, किसी को कामकाज ज्यादा है, किसी की दिनचर्या ठीक नहीं है, किसी को शारीरिक बीमारियां ज्यादा हैं। ये सब बातें बहाना बन जाती हैं, कारण बन जाती हैं और मनुष्य सोच लेता है कि हम तेज पुरुषार्थ नहीं कर सकते। परंतु हमें अपने से बात करनी है। हम यदि तेज पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो वो यदि उड़ती कला में नहीं जाएंगे तो भला कौन जाएगा? सर्वशक्तिवान की शक्तियां जिनसे जुड़ गई हों वो यदि विघ्नों को हंसते हंसते पार नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? हम अपने से बातें करें। हम ही वो बाबा के चुने हुए रत्न हैं जिन्हें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। सभी विचार करें, क्या ऐसी उमंगे हम अपने मन में रख सकते हैं कि जो कुछ कार्य बाबा ने हमें दिया है, जैसी स्थिति बनाने को उसने हमें कहा है, हर कीमत पर पूरा जोर लगाकर हम उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, संसार में किसी की जब राजाई चली जाती थी, छोटी सी राजाई, उसको पाने के लिए वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते थे, बलिदान कर देते थे, कष्ट सहते थे। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, हम सब के लिए प्रेरक है। हमें तो विश्व का राज मिलने वाला है। जो राज हमने खो दिया था वो हमें पुनः प्राप्त होने जा रहा है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें गाइड करने वाला भी स्वयं भगवान है। उसकी गाइडेंस पर हम उस राज को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम थोड़ी सी मेहनत करना नहीं चाहेंगे? जन्म जन्म का भाग्य जब हम बना रहे हैं तो क्या हम अभी भी लौकिक कार्य धंधों में ही अपने को अटकाए रखेंगे? बात कर लें सभी अपने से। संगम युग के ये दिन बहुत इंतजार के बाद हम सब के पास आए हैं। भगवान हमारा मेहमान बनकर आया है। हम अपने से पूछें कि हम इन दिनों को, इन अनमोल क्षणों को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आखिर हमारा? ऐसा न हो कि ये सुखद घड़ियां, ये अनमोल क्षण व्यर्थ में बीत रहे हों, बिना मतलब के प्रपंचों में हमने स्वयं को उलझा लिया हो, बहुत सारी टेंशन्स हमने अपने अंदर रख ली हो, मन बोझ से बोझिल हो रहा हो, हमारे बिगड़े हुए संबंध हमको कुछ भी न करने दे रहे हो। ये सब भी हो सकता है। मैं आप सभी के लिए बहुत काम की बात सामने रख दूं। हम अपना समय संसार की इन समस्याओं में, इन तनावों में, इन झगड़ों में देते हैं। 4-6 घंटे मनुष्य के रोज इन प्रपंचों में गुजर जाते हैं। यदि इससे आधा समय भी हम अपने तीव्र पुरुषार्थ में दें तो ये समस्याएं होंगी ही नहीं, ये परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और हमें ईश्वरीय सुख प्राप्त होने लगेगा। तो हमने विचार किया है कि हम आपके समक्ष एक 7 दिन का सरल पुरुषार्थ का प्रोग्राम रख देते हैं, ताकि आप सभी अपने कार्य व्यवहार और ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सहज भाव से इन चीजों को अपना सकें। कुछ सजेशंस आपके लिए हैं और उसमें मुख्य बात ये है, हम अपने अमृत वेले को कैसे व्यतीत करें। सारे दिन किसी एक स्वमान का अभ्यास करते रहें, कोई एक धारणा ले ले जीवन में जिसको हम सारा दिन अपनाएंगे, जिस पर पूरा ध्यान देंगे, और कुछ थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें। तो अमृत वेले को छोड़कर बाकी 2 ही अभ्यास यदि हम सारा दिन करेंगे, 2 या 3, तो हमारी दिनचर्या हमारे लिए बहुत सुखदायी हो जाएगी, जीवन वरदानी लगेगा और हमें लगने लगेगा कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। उसका साथ होने के बाद जहाँ उसका साथ है वहाँ समस्याएं होती ही नहीं, जहाँ उसका साथ है वहाँ कोई भय होता ही नहीं, चिंताएं वहाँ ठहरती नहीं। तो हम शुरू कर रहे हैं संडे से, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन बहुतों के लिए, और हम सभी इसमें एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपना पुरुषार्थ करेंगे। हम ऐसा भी सोच लें कि ये पहला दिन हमारे शेष 6 दिनों के लिए फाउंडेशन भी है, नींव है, इसको हम बहुत अच्छी तरह व्यतीत करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात और आपके सामने रख दें, हम अपने पूरे सप्ताह में अपने कार्य व्यवहार को, अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह मैनेज करें, इस तरह पूरा करें कि संडे के लिए हमारे पास बहुत सारा काम न रह जाए। ऐसा ना हो जाए कि भाई छुट्टी बहुत सारे काम समाप्त करने के लिए है, पर हम छुट्टी को इस तरह देखें कि छुट्टी का दिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए है। आप में से जो कोई कर सकते हो, इस दिन मौन रख लें, अर्ध मौन रख लें, कम से कम बोलेंगे, सारा मौन रख लें, और हो सके तो व्रत भी रख लें, फास्ट रख लें, या कम से कम भोजन करें, बिल्कुल हल्का भोजन करें। ऐसा समझ लें कि संडे का दिन हमारे लिए अच्छी तपस्या का दिन है, शारीरिक शुद्धि का दिन है, गहन शांति अनुभूति का दिन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप काम का छोड़कर योग में बैठ जाएं, क्योंकि मैं जो साधनाओं के तरीके अपनाए हैं और बाबा ने जो सिखाए हैं वो कर्म योग में ही हैं। फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि कम से कम आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को योग में अवश्य बैठें। योग अभ्यास अच्छी तरह से करने के लिए उसमें हमारी बहुत अच्छी स्थिरता हो जाए, 5 स्वरूपों के अभ्यास से हम प्रारंभ करें अपनी साधना। मैं आत्मा हूं, 1 सेकंड के लिए, मैं सतयुगी देव हूं, 1 सेकंड, मैं मंदिरों में स्थित पूजनीय आत्मा हूं, इष्ट देव देवी हूं, 1 सेकंड के लिए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे सिर पर सदगुरु के आशीर्वाद का हाथ है, फिर मैं फरिश्ता हूं, लाइट के शरीर में हूं, 1 सेकंड, दूसरा राउंड लें, 3-3 सेकंड उसमें स्थित हो जाएं, तीसरा राउंड लें, 5 सेकंड, फिर 10-10 सेकंड, इस तरह 5 बार इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन बहुत अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है और हमें योग का रस मिलने लगता है। हम शुरू कर रहे हैं अमृत वेले से। जैसे ही हमारी आंख खुले, कितना अच्छा हो कि हम अपने सामने भगवान को देखें। इसका सरलतम उपाय है बाप दादा का आह्वान कर ले अपने घर में आंख खुलते ही। आप सेंटर में हैं तो सेंटर में बाबा का आह्वान कर लें और महसूस करें कि बाप दादा नीचे उतर आए हैं, आपके सम्मुख हैं, उनसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, आपके घर के वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशंस से बहुत शांत में, प्रेम में, पवित्र और शक्तिशाली हो रहे हैं। आधा मिनट या 1 मिनट इस सीन को आप सभी अपने सम्मुख लाएं। समझ सकते हैं सभी, अमृत वेले की शुरुआत यदि हम इन सुखद क्षणों से करेंगे तो हमारे दिन की क्या, जीवन की क्या, पूरे कल्प की शुरुआत ही श्रेष्ठ हो जाएगी। बीज बो रहे हैं हम संगम युग पर, जैसा चाहे बीज बो दें, ये समय दोबारा नहीं आएगा। भगवान हम पे राजी हुआ है, अपने सद्विवेक का प्रयोग कर लें, प्रसन्न हुए भगवान का संपूर्ण लाभ कैसे कैसे उठाएं, अपने भाग्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए बाबा को सामने देखते हुए उससे बातें करें, उससे दृष्टि ले लें। इस बार बाबा ने कहा है अंतिम संदेश में कि बाप दादा रोज सवेरे हर बच्चे को दृष्टि देंगे और दृष्टि से शक्ति भरेंगे। हम ये भी याद कर लें कि इस वर्ष के लिए बाबा ने एक वरदान दे दिया है कि इस वर्ष बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो अवश्य कर पाएंगे, जिस संस्कार को हम बदलना चाहते हैं उसको हम अवश्य बदल पाएंगे, जो अलबेलापन कोई सुस्ती हम त्यागना चाहते हैं जरा सी हिम्मत रखेंगे तो त्याग देंगे। तो सवेरे हमें उठना ही है और उठकर प्रभु मिलन के सुखद क्षणों का रस आस्वादन करना है। इस तरह हम बाप दादा से सवेरे सवेरे दृष्टि लें, उससे बात करें, फिर उठें आप। ये कार्य करने के बाद फ्रेश होने जाएं, स्नान करने जाएं, वैसे योग करना तो योग करें। और फिर मैं आपके समक्ष दूसरी दो बातें और रख रहा हूं सवेरे, जिनका आप आनंद लेंगे। सवेरे के समय का विशेष रूप से महत्व तो हम सब जानते हैं, इसका आनंद लेने के लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने मन में सुंदर सुंदर विचारों की रचना करें, क्रिएट करें हम अच्छे विचार। जैसे मैं आपके सामने पहला विचार रख रहा हूं, बहुत सुंदर विचार है ये कि बाबा ने अपने सभी खजानों का मुझे मालिक बना दिया है। बाबा वतन में अपने सभी खजाने खोल कर बैठा है, मेरा आह्वान कर रहा है कि आओ बच्चे, जो चाहे जितना चाहे ले लो। बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहा है, उसने मुझे अनेक वरदान और शक्तियां दे दी हैं, वो सचमुच मुझ पे मेहरबान हुआ है। इस तरह के संकल्प सवेरे रचने से मन फ्रेश हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा, कोई भी सुस्ती या अलबेलापन या और कोई निगेटिव संकल्प समाप्त हो जाएगा। शुरुआत इस चीज से करें, फिर अभ्यास करें, मैं आत्मा इस तन में आई हूं। लक्ष्य ये है कि हम स्वयं को शरीर से बिल्कुल न्यारा महसूस करें। मैंने जैसे इस शरीर का आधार लिया है, परम धाम से मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, ऐसी फीलिंग्स को हम बढ़ाएं। जैसे बाबा ऊपर से दूसरे के तन में अवतरित होते हैं, मैं भी परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूं। क्यों? इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए। अपने ज्योति स्वरूप को भ्रकुटी के बीच देखने लगे, मैं चमकता हुआ बिंदु, मुझसे चार ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं एक ऐसा शक्तिशाली बल्ब हूं जिसका प्रकाश सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा अपने को आत्मा देखते हुए अपनी बुद्धि को ले चले बाबा के पास परम धाम में, सर्वशक्तिमान से अपने को जोड़ दें और महसूस करें उसकी शक्तियां मुझ में भर रही हैं। बस परम धाम है, मैं आत्मा हूं वहां, और सामने हैं सर्वशक्तिमान, उसकी शक्तियां मुझ में पड़ रही हैं, समा रही हैं। ये बीज रूप स्थिति है, इसको ही ज्वाला रूप कहते हैं, पावरफुल स्थिति कहते हैं। थोड़ी देर इसमें रहने से तेजी से परमात्म एनर्जी आत्मा में प्रवेश करने लगती है और आत्मा शुद्ध होने लगती है, विकर्म नष्ट होने लगते हैं। ये अभ्यास कुछ देर करेंगे, आप इस अभ्यास को पहले कर लें या इससे पहले कोई दूसरा अभ्यास कर लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कई लोग ये सोचते हैं हम पहले फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में जाएं, बाबा से मिलें, फिर परम धाम में जाएं, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें ऐसे ही ऊपर जाना है। हम डायरेक्ट परम धाम की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं और सूक्ष्म वतन में जाकर फिर परम धाम में भी जा सकते हैं। हम बाबा के सामने चले ऊपर, महसूस करें मैं फरिश्ता हूं और यहां से उड़कर चला सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। सामने बाप दादा हैं, उनसे निकली हुई तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बस इन किरणों को लेते रहें, ये बहुत श्रेष्ठ सुख है, इस सुख को स्वयं में भरते रहें। पहले कर लें या बाद में, जैसे मैंने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे और बाबा से बातें करेंगे। बाबा से बातें चाहे सूक्ष्म वतन में करें, चाहे हम यहाँ हैं और बाबा ऊपर हैं उससे करें, चाहे बाप दादा से करें, चाहे आप डायरेक्ट शिव बाबा से रुधिहान कर लें, इन सब में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तो दिल की बात बाबा से करने का एक सुंदर मौका हम सबको मिलता है। कई लोग पूछते हैं बाबा से क्या बात करें। याद रहे, केवल बाबा की महिमा करना, बाबा से बातें करना नहीं है। हम याद करें तुमने हमें क्या क्या दिया है, तुमने कैसे हमारा श्रृंगार किया है। बाबा का सच्चे दिल से गुणगान करें, उसे बात करें, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। अगर तुम ना आते तो मैं संसार सागर में बहकर कहां चला गया होता। यदि तुम ना आते तो मेरा जीवन दुख और अशांति से भरपूर रहा होता। मैं भी सांसारिक मनुष्यों की तरह व्यसनों में, तनाव में, परेशानियों में जीवन की यात्रा तय करता। वाह बाबा, तुम आए तो तुमने मुझे सुख की राह दिखा दी, तुमने मुझे सुखों का भंडार बना दिया, तुमने मुझे ऐसी असीम शांति दी कि मैं ये शांति सारे संसार को बांट सकती हूँ। इस तरह की बातें बाबा से करें। सवेरे का समय जब पूर्ण हो जाए, अर्थात 4:45 बज गए, 5 बज गए, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा योग समाप्त हो गया। आप अपने योग को कंटिन्यू रखें, चालू रखें और कुछ अभ्यास आगे बढ़ाते रहें। स्नान करते समय भी, मैं आत्मा, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं इस मंदिर की सफाई कर रही हूँ, मैं इस मंदिर का इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, या बाबा से बातें करते रहें। बाबा आप भी नीचे आ जाओ, हमारे साथ स्नान करो, आओ मैं आपको स्नान कराऊं। इस तरह की रूढ़ियां करते हुए हम स्नान करें, थोड़ा घूमने जाएं तो बहुत अच्छा अभ्यास करें कि मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं, मैं पीस हाउस हूँ, लाइट हाउस हूँ, बाबा से शांति किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। घूमते हुए योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जो अपने पुरुषार्थ को बहुत श्रेष्ठ गति देना चाहते हैं, उन्हें आधा घंटा सवेरे एकांत में अवश्य घूमना चाहिए। जब आप अपने घर से बाहर निकलकर आसमान की छत के नीचे आएंगे, तब आप पाएंगे आपके विचार बहुत श्रेष्ठ हो गए हैं। छत के नीचे के विचार और आकाश के नीचे के विचारों में अंतर होता है। नीची छत विचारों को छोटा कर देती है, आसमान की छत सबसे ऊंची है। यही मनुष्य को सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, हाईएस्ट विचारों का सुखद आनंद प्राप्त होता है। जब आप कर्म क्षेत्र पर आ गए, जो बहने हैं उनको भोजन बनाना है, वो कोई एक संकल्प ले लें रोज कि आज मैं इष्ट देवी बनकर भगवान के लिए भोग बनाऊंगी, आज मैं ऐसे भोग बनाऊंगी कि अपने परम प्रियतम के लिए भोग बना रही हूँ। रोज भी अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन जो लोग कार्य पर जाते हैं उन्हें नियम बना लेना चाहिए कि 5 मिनट योग में बैठकर ही काम पर जाएंगे। जब काम से लौटते हैं तो 5 मिनट आते ही योग अभ्यास करेंगे। आपको बिजनेस है तो आप अपनी दुकान खोलते ही पहले 5 मिनट योग अभ्यास करेंगे, दुकान बंद करने से पहले 5 मिनट योग अभ्यास करेंगे। सारा दिन क्या करना है, हाँ शाम को भी आधा घंटा बैठकर योग जरूर करना चाहिए। उससे बुद्धि की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, मन हल्का हो जाता है। एक नियम और आप अपनी दिनचर्या में बना लें कि रोज एक अव्यक्त मुरली अवश्य पढ़नी है। ज्ञान का खजाना बाबा ने हम सभी को दिया है। मुरलियों में एक एक बात ऐसी आती है जो हमारी चिंताएं हर लेती है, हमारे मनोबल को बढ़ा देती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देती है, हमें बिल्कुल सरल चित्त कर देती है, हमें अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है और हम अपने पर हंसने लगते हैं कि हाँ तुम इतनी महान आत्मा, तुम इतनी शक्तिशाली आत्मा और छोटी सी बात से परेशान हो गए। तो मुरली का बहुत महत्व है। मैंने पीछे एक सजेशन दिया है कि जिन भाई बहनों के घर में सीडी प्लेयर हो, आजकल सीडी निकली है, VCD विशेष रूप से, वह अव्यक्त बाप दादा की कैसेट चला दिया करें अपने घर में सवेरे शाम। देखो क्या चमत्कारिक अनुभव होता है। जिनके पास केवल टेप रिकॉर्ड है वह व्यक्त बाबा की कैसेट या साकार बाबा की कैसेट चलाया करें। सारा दिन अभ्यास करने के लिए हम संडे के लिए काम ले रहे हैं। सभी को एक स्वमान का अभ्यास करना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। और याद रखना है कि ज्ञान सूर्य की किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आप लक्ष्य रखें घंटे में एक बार अर्थात 15-16 बार सारे दिन में यह अभ्यास करें। अपना स्वरूप देखें, मेरा चेहरा जैसे सूर्य की तरह चारों ओर किरणें निकल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य या पवित्रता का सूर्य हूं। बहुत सुंदर स्वमान होगा ये। लक्ष्य रखें, इसमें आपको कम से कम आधा मिनट एक बार स्थित होना है। एक मिनट हो जाए तो बहुत सुंदर बात होगी। आपको इस अभ्यास से ऐसा लगेगा कि मानो मन सारा दिन शांत रहता है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहता है, आत्मा सुख फील करने लगेगी और बहुत सारी व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी। जब मन शांत रहता है तो आत्मा की शक्तियां बढ़ जाया करती हैं। इसी के साथ साथ संडे के लिए एक गुण हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं और वो है सरलता। इतवार के दिन के लिए आप ये धारणा रख लें कि मुझे बिल्कुल सरल चित्त रहना है, हल्का। हल्के का अर्थ है किसी भी बात को बड़ा नहीं समझना, बड़ी बात को भी छोटा कर देना और छोटी बात को समाप्त कर देना। आप सभी को पसंद आएगी ये बात। हल्का रखना है अपने को, कोई बात हो जाए सोचो नथिंग न्यू, कुछ बात हो जाए लेट गो, खत्म हो जाने दो इसको। हर बात पर डिबेट न करें, डिस्कशन न करें, नहीं तो क्या होता है कि मनुष्य छोटी बातों को बढ़ा देता है और फिर स्वयं उनमें उलझ जाता है। जब आप रात्रि की समाप्ति करें तो बहुत अच्छा हो कि बाबा के नाम एक पत्र लिख दें, बाबा आज हमने सारा दिन ये किया। लेटर टू सुप्रीम फ्रेंड, लेटर टू सदगुरु, भगवान सदगुरु के नाम पत्र या खुदा दोस्त के नाम पत्र, और गुड नाइट करके ऐसी फीलिंग में सो जाएं कि मैं आत्मा ये शरीर छोड़ परम धाम में जा रही हूं। और बस बाबा की गोद में, बाबा की छत्र छाया में विश्राम करें तो दिन का प्रारंभ भी भगवान के साथ और दिन का अंत भी उसी के साथ, तो नींद भी उसी के साथ होगी। इस तरह हमारा नींद का समय भी योगयुक्त स्थिति में गिना जाएगा। यह है संडे का प्रोग्राम। हमें विश्वास है आप इसको इच्छापूर्वक दृढ़तापूर्वक अपनाएंगे। ओम शांति।